क्या डूबते जहाज पर कोई नास्तिक हो सकता है? अस्सलाम वालेकुम भाइयों, बहनों, दोस्तों और सभी दर्शकों को थॉट रेवोल्यूशन में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम कुरान की 31वीं सूरह की 32वीं आयत पर नज़र डालेंगे। इससे पहले कि हम डूबते जहाज़ों पर नास्तिकों की बात करें, मैं एक महत्वपूर्ण और शक्तिशाली बात करना चाहता हूँ, और वह ज्ञान, सत्य, निश्चितता से संबंधित है। हम इन चीज़ों तक कैसे पहुँचते हैं? हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहाँ नास्तिक आम तौर पर लोग इस विचार को बढ़ावा देते हैं कि विज्ञान ही सत्य तक पहुँचने का एकमात्र तरीका है, कि किसी बात पर विश्वास करने या उसे स्वीकार करने के लिए हमें तार्किक और तर्कसंगत बहस की ज़रूरत है। ये सभी विचार मौजूद हैं, लेकिन सवाल ये है, ये ही तरीके क्यों और ये सत्य के सबसे अच्छे तरीके क्यों? विज्ञान को देखिए, साइंटिज्म कि विज्ञान ही सत्य का एकमात्र रास्ता है टूट जाता है, क्योंकि विज्ञान पूर्ण सत्य नहीं दे सकता, ये आगमन पर आधारित है। और दूसरा, विज्ञान केवल भौतिक चीज़ों के बारे में बता सकता है, यह केवल भौतिक चीज़ों का अध्ययन कर सकता है। इसलिए विज्ञान नीति निरपेक्ष है, यह नैतिक सत्य नहीं बता सकता। इसलिए विज्ञान सत्य का एकमात्र रास्ता नहीं है। और यह कहने के बावजूद अधिकांश बातें जिन पर हम विश्वास करते हैं कि वैज्ञानिक बताते हैं, वे उनकी गवाही पर आधारित हैं। और अधिकांश चीज़ें जिन पर हम विश्वास करते हैं, वे गवाही पर आधारित हैं, जो ज्ञान का एक और रास्ता है। इस्लामी दृष्टिकोण से जब हम कुरान पढ़ते हैं, तो अल्लाह शायद ही कभी तर्कों और प्रमाणों से अपना अस्तित्व साबित करने की कोशिश करता है। इसके बजाय ईश्वर उदाहरण के लिए अपने संकेतों के बारे में बात करता है, और ये निशानियाँ इससे भी ज़्यादा शक्तिशाली हैं, क्योंकि ये सीधे आपके दिल और अनुभव से बात करती हैं। पूरी कायनात एक संकेत है, आप एक संकेत हैं। अल्लाह की दया से देखें अल्लाह क्या करता है, वह आपको देता है विशेष अद्वितीय संकेत। आपके जीवन में आपके लिए कस्टम डिज़ाइन किए गए विशेष अवसर, स्थितियाँ, जो चीज़ें होती हैं। एक सामान्य तार्किक तर्क के विपरीत क्या यह ज़्यादा शक्तिशाली नहीं है? क्या ईश्वर आपको आपकी मांग से ज़्यादा नहीं दे रहा है? आपके जीवन में होने वाली विशेष निशानियाँ, एक नास्तिक के तौर पर भी अपने जीवन पर विचार करें। मुझे यकीन है कि आपके जीवन में ऐसे अनुभव आए होंगे जहाँ आप फंस गए थे, मौत का सामना किया, कुछ हुआ और उस पल में आपके पास मुड़ने के लिए कोई नहीं था, और आप ईश्वर की ओर मुड़े और उसने आपको सहारा दिया, आपको उस स्थिति से बाहर निकाला। ये निशानियाँ हैं, ईश्वर हमें ये निशानियाँ देता है। और दुर्भाग्य से मुसलमानों के रूप में भी हम इस विचार की ओर मुड़ते हैं कि हमें ईश्वर के लिए तार्किक प्रमाण और वैज्ञानिक डेटा चाहिए, भले ही वह अप्रत्यक्ष हो। हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, अल्लाह हमें वास्तविक निश्चितता की ओर निर्देशित कर रहा है, और वह है उसके संकेत, उसके संकेतों पर विचार करना। कुरान एक संकेत है, हम उन्हें आयतें कहते हैं, लेकिन ये आयात हैं, ये निशानियाँ हैं। उसके संकेतों पर विचार करें, अपनी बुद्धि का उपयोग करें और स्पष्ट को स्वीकार करें, संकेतों से मुँह मत मोड़ो। और इसीलिए इस आयत में, अध्याय 31 आयत 32 में, आइए आयत के अंत को देखें। ईश्वर हमें बताता है कि कोई भी उसकी निशानियों को अस्वीकार नहीं करता सिवाय उसके जो एक कृतघ्न गद्दार है। इस पर विचार करें, और सच्चाई यह है कि हम नहीं कर सकते। यदि हम सचेत रहे हैं तो हमने अपने आसपास इन संकेतों को देखा होगा। हमारे जीवन में ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें निर्देशित करती हैं, हमें एहसास कराती हैं कि कुछ है जो मेरे जीवन को नियंत्रित कर रहा है, निर्देशित कर रहा है। और जब हमने यह देखा है, एक आभारी व्यक्ति जब वह अपने जीवन में इन आशीषों को देखता है, हाथ, पैर, दांत, आँखें, जब वह इन आशीषों को महसूस करता है, और वह बस इस तरह जीवन नहीं जीता जैसे कोई सोता हुआ व्यक्ति। जब वह ये निशानियां देखता है तो वह शुक्रगुजार होता है, और शुक्रगुजारी किसी के लिए होती है। आप सिर्फ कृतज्ञता के लिए कृतज्ञ नहीं हो सकते, है ना? और यह तर्कसंगत है, कोई उच्च शक्ति, कोई सृष्टिकर्ता होना चाहिए जो मेरी जिंदगी को दिशा देता है, सब देता है, और जिसने मुझे बनाया है, और यह व्यक्ति वास्तव में आभारी है। लेकिन ईश्वर हमें बता रहा है कि वे लोग जो उसके संकेतों को अस्वीकार करते हैं, वे वास्तव में कृतघ्न हैं, और वे वास्तव में गद्दार हैं, क्योंकि वे मुड़ जाते हैं उनके पास संकेत आने के बाद भी। और इस आयत में और भी शक्तिशाली क्या है, यदि हम इसकी शुरुआत देखें तो ईश्वर उसके एक और संकेत की ओर इशारा करता है, एक बहुत शक्तिशाली संकेत। यह एक अनुभव है। ईश्वर कहता है, जब ये लोग, कुछ लोग जिन्हें मैं देखता हूँ, और ऊंची लहरें आने लगती हैं जो उन्हें ढक लेती हैं, और नावें हिल रही होती हैं, और उन्हें पता नहीं होता कि वे जीवित बचेंगे या नहीं, इस बिंदु पर लोग सच्चे विश्वास में, सच्चे धर्म में ईश्वर की ओर मुड़ते हैं, और वे ईश्वर की इबादत करते हैं, और वे ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, और वे ईश्वर से उन्हें बचाने के लिए कहते हैं। अपने आप से सवाल पूछें, इन स्थितियों में आप किस तार्किक प्रमाण के आधार पर अपने विश्वास को टिका रहे हैं? आप किस तार्किक प्रमाण पर निर्भर हैं जिसने आपको यह विश्वास दिलाया है कि ईश्वर मौजूद है और केवल वही आपकी मदद कर सकता है? जब आप हवाई जहाज में होते हैं, हजारों फीट ऊपर, और टर्बुलेंस आता है, जहाज हिलता है, आपको समझ नहीं आता क्या हो रहा है, तो आप दुआ करने लगते हैं। नास्तिक भी उस पल भीतर ही भीतर दुआ करने लगता है। आपके पास कौन सा सबूत है, कौन सा तर्क या डेटा जिसने आपको यकीन दिलाया कि ईश्वर है और मुझे उसी से दुआ करनी चाहिए, क्योंकि मदद सिर्फ वही कर सकता है? देखें, सच्चाई यह है कि ये संकेत हैं। और फिर आगे ईश्वर हमें एक और संकेत देता है जब वह आपको सुरक्षित रूप से जमीन पर पहुंचा देता है। वह आपकी मदद करता है और आपको सुरक्षित रखता है और आप आभारी हैं, पर फिर आप मुड़ जाते हैं। ईश्वर कहता है कि ये लोग ईमान में बहुत सामान्य हो जाते हैं, वे ईश्वर से दूर हो जाते हैं, वे अपने जीवन में लौट जाते हैं, वे ईश्वर को भूल जाते हैं, वे उससे मुंह मोड़ लेते हैं, वे कृतघ्न हो जाते हैं, है ना। जीवन की स्थिति यही है, यही मनुष्यों के रूप में हमारी स्थिति है। दुर्भाग्य से कई लोग जानबूझकर इन निशानों को नकारते हैं, वे जानबूझकर विमुख होते हैं, और अल्लाह हर किसी को निशान देता है, लेकिन लोगों ने जानबूझकर उन्हें ढकने, उनसे मुंह फेरने और बस अपने कामों में लगे रहने का फैसला किया है। ये खुद के साथ बड़ा अन्याय है। फिर इन लोगों को सबूत चाहिए, इन्हें ईश्वर का प्रमाण चाहिए। यह ऐसा है जैसे कोई बहुत ही चमकीले दिन समुद्र तट पर जा रहा हो और सूरज चमक रहा हो। वे जाते हैं, अपना सिर रेत में डालते हैं और फिर कहते हैं, मुझे सूरज का सबूत दो। हम यही कर रहे हैं। संकेत हमारे चारों ओर हैं, जैसे उस व्यक्ति को घेरने वाली तेज धूप। लेकिन अगर आप अपना सिर रेत में डालना चुनते हैं और फिर ईश्वर के लिए सबूत मांगते हैं, तो दुर्भाग्य से कोई आपकी मदद नहीं कर सकता। इसलिए यदि आप सच्चे हैं और आप सत्य की तलाश करना चाहते हैं, तो अपने जीवन पर चिंतन करें, क्योंकि वही सबसे बड़ा निशान है, वह सबसे बड़े निशानों में से एक है। और ईश्वर की पुस्तक कुरान पर विचार करें, जो एक और संकेत है ना। इन चीज़ों पर विचार करें, वास्तव में इन चीज़ों के बारे में सोचें मेरे दोस्तों, भाइयों और बहनों। और समझें, बस निष्कर्ष निकालने और सारांशित करने के लिए इस झूठी कहानी और विचार पर न जाएं कि विज्ञान ही सत्य का एकमात्र रास्ता है, तार्किक तर्क ही सत्य का एकमात्र रास्ता है। नहीं, ईश्वर आपको कुछ अधिक व्यक्तिगत, अधिक शक्तिशाली दे रहा है, जो उसके संकेत हैं। उनकी ओर मुड़ें, अपने जीवन पर विचार करें और सृष्टिकर्ता की इबादत करो, जो हर चीज़ का रचयिता है, जो हमें सब कुछ देता है, जो हमारी माँ से भी ज़्यादा प्यार करता है। उसी की ओर रुको और सिर्फ उसी की इबादत करो। देखने के लिए धन्यवाद। अगली बार तक अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।